हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। एक बहुत ही भव्य 3 मंजिला बंगलेनुमा घर के बाहर लाइट्स और फूलों की इतनी अधिक सजावट थी कि घर के साथ साथ वहाँ खड़ी गाड़ियों के शीशे भी शाम के उस समय इतने जगमगा रहे थे कि बढ़ती रात का अंधेरा वहाँ पता ही नहीं चल रहा था। वो घर देखने में पहले ही बाहर से काफी सुंदर और भव्य बना हुआ था। ऊपर से आज की सजावट ने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। शायद ही घर का कोई कोना होगा जो रोशनी से नहाया हुआ ना हो, और तरह तरह के ताज़े फूलों की सुगंध हर जगह बिखरी हुई थी, क्योंकि हर जगह को ताज़े फूलों और पर्दों से सजाया गया था। उस जगह पर भीड़ नहीं थी, लेकिन अच्छी खासी चहल पहल नज़र आ रही थी। ये सब दूर से देखकर यही लग रहा था कि घर में कोई शादी या बड़ा समारोह है। दूर से देखने में ही वो घर किसी बहुत बड़े अमीर और रसूखदार व्यक्ति का लग रहा था। उसी घर के अंदर बने एक बड़े कमरे में सुर्ख लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में पूरी तरह ब्राइडल ज्वेलरी और मेकअप से सजी धजी एक बेहद खूबसूरत लड़की आईने के सामने बैठी हुई थी। वो लगभग पूरी तैयार हो चुकी थी, केवल सर से दुपट्टा लेना बाकी था। वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी खुशी या मुस्कुराहट नहीं थी, और ना ही दुल्हनों वाली कोई शर्म या घबराहट। लेकिन इतना सजी धजी होने के बावजूद भी वो आईने में खुद को नहीं देख रही थी। उसके चेहरे पर दुख और निराशा के भाव थे, और उसकी आंखें सूजी हुई और आंसुओं से भरी हुई लग रही थी। उसके हाथ में मोबाइल फोन था, और स्क्रीन पर एक मुस्कुराती हुई औरत की तस्वीर थी, जिसने साड़ी पहन रखी थी और लाल बिंदी व सिंदूर लगाया हुआ था। उस दुल्हन बनी लड़की का पूरा ध्यान अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर था, और वो उसे देखकर काफी देर से शिकायतें कर रही थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? देखिए ना, आपके जाने के बाद क्या हाल हो रहा है मेरा। पहले दीदी के साथ भी यही करने वाले थे, लेकिन वो तो चली गई, बच गई इस सब से, लेकिन मैं नहीं बच पाई। और ये कैसे परिवार वाले हैं मेरे, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, बस फरमान जारी कर दिया कि मेरी शादी यहीं होगी। मेरी मर्जी क्या है, मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा। माँ, क्यों चली गई आप मुझे छोड़कर? क्यों, मुझे भी आपके पास आना है, नहीं करनी है ये शादी, नहीं बंधना मुझे किसी भी ऐसे रिश्ते में, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर वो लड़की एक के बाद एक शिकायतें करती जा रही थी, और ये सब बोलते हुए अब उसकी आंखों में भरे आंसू उसके गालों पर बहने लगे थे। लाख कोशिशों के बाद भी वो खुद को नहीं संभाल पाई, और आखिरकार उस मोबाइल को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। उसकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे, और मुंह से सिर्फ माँ माँ ही निकल रहा था। क्या नौटंकी लगा रखी है इस लड़की ने भी सुबह से। अब बताओ, लड़के वाले भी आ चुके हैं, कहीं किसी ने सुन लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। ज्योति, देख जाकर क्या हो गया अब सुनैना को, क्यों रो रही है वो ऐसे। एक 50-55 वर्ष की औरत अपने साथ बैठी लगभग 27-28 साल की लड़की से बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जाकर देखती हूँ और मैं समझा दूंगी सुनैना को, आप यहाँ मेहमानों को देखिए। ज्योति उठकर सुनैना के कमरे की तरफ जाती हुई बोली, जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। क्या हो गया जीजी, इतना नाराज क्यों हो रही हैं आप? बस कुछ ही देर की बात है, वरमाला का मुहूर्त बस होने वाला है। लगभग 50 वर्षीय एक आदमी उस औरत को चिल्लाते हुए सुनकर उसकी तरफ आते हुए बोला, देख ब्रजेश, मुझसे तो ना संभलती तेरी छोरियाँ, गायत्री को ही भेज, वही जाकर समझाएगी तेरी लड़की को। कमरे से रोने की आवाज़ें तो इस तरह से आ रही हैं जैसे कोई डंडे से मार रहा हो तेरी सुनैना को, वो औरत गुस्से में भुनभुनाते हुई बोली। अरे जीजी, लड़कियां तो शादी के वक्त रोती ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, और गायत्री थोड़ा काम में लगी है, नहीं तो वो चली जाती। वैसे आप भी तो सुनैना की बुआ है, थोड़ी देर आप समझा देंगी उसे तो उसे भी अच्छा लगेगा, ब्रजेश उस औरत की थोड़ी चापलूसी करते हुए बोला। हाँ पता था मुझे तो ऐसा ही कुछ कहेगा, इसीलिए पहले ही ज्योति को भेज दिया है। अब पंडित और लड़के वालों को बोल जल्दी शादी की रस्में शुरू करें, और हमारी भी जान छूटे इन सब से। उस औरत ने ब्रजेश से कहा और फिर एक तरफ चली गई। ब्रजेश भी वहाँ से दूसरी तरफ आ गया और शादी की रस्में जल्दी शुरू करवाने की बात करने लगा। क्या है सुनैना, इतनी तेज आवाज में क्यों रो रही हो? बाहर तक आवाजें जा रही हैं। मम्मी जी इतना नाराज हो रही हैं। मेरा मतलब है तुम्हारी बुआ जी। सच में बाकी सब सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि तुम्हें मारपीट कर मंडप में बैठाया है क्या हम लोगों ने? ज्योति उस कमरे के अंदर आती हुई बोली, हाँ बस वही बाकी रह गया था। बाकी तो और कोई कसर छोड़ी भी नहीं है आप लोगों ने। ज्योति की बात पर सुनैना अपने हाथों से अपने आंसू पोंछती हुई बोली, ये बार बार रोकर मेकअप मत खराब करो। कितनी बार टचअप करूंगी मैं तुम्हारा? तुम्हारी दीदी नैना नहीं हूँ मैं जो 10 बार तुम्हारा बिगड़ा काम बनाती रहूँ। सुनैना का आंसुओं से खराब हुआ मेकअप देखकर ज्योति भी गुस्से में भुनभुनाती हुई बोली और फिर हाथों में फेस पाउडर और पफ लेकर सुनैना के सामने आकर उसके चेहरे पर लगाने लगी। नैना दी तो कोई बन भी नहीं सकता मेरे लिए, लेकिन भाभी इतना जरूर कहूंगी कि चाहे जितना मेकअप लगा लीजिए, लेकिन इस शक्ल पर दिखते हुए आंसू दर्द और तकलीफ का क्या करेंगे? वो तो किसी भी पाउडर क्रीम से छिप नहीं सकते ना। सुनैना एकदम संजीदा लहजे में ज्योति की तरफ देखकर बोली, सुनैना तुम मुझे क्या सुना रही हो बार बार? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे लिए ये सब करने का। वो तो मजबूरी में करना पड़ रहा है मम्मी जी और बाकी सबके बोलने पर, क्योंकि कोई और है भी तो नहीं। और ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो तुम्हारी नैना दीता ही किया धरा है। अगर वो चुपचाप घर वालों की मर्जी से शादी कर लेती तो तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई और नौकरी के लिए अच्छा खासा समय मिल जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने तो नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। और तुम हो कि उसके नाम की माला जपते हुए हम सबको गलत ठहरा रही हो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी बड़ी बहन के घर छोड़कर भाग जाने के बावजूद भी इतने बड़े और अमीर आदमी से तुम्हारी शादी होने जा रही है। पता है तुम्हें, ये घर भी उसका ही है। सुनैना का मेकअप ठीक करती हुई ज्योति ने एक के बाद एक सारी बातें बताते हुए कहा, लेकिन सुनैना पर ज्योति की इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने हिकारत से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। ज्योति भाभी, बुआ जी पूछ रही हैं, सुनैना भी तैयार हो गई क्या? पंडित जी और बाकी सब वरमाला की रस्म के लिए उन्हें नीचे बुला रहे हैं। एक लगभग 17-18 साल के लड़के ने कमरे के अंदर झांकते हुए ज्योति से पूछा, हाँ बिल्कुल तैयार है ये, तुम जाकर सबसे बता दो, मैं बस इसे लेकर आती हूँ अपने साथ। ज्योति ने उस लड़की की बात का जवाब देते हुए कहा और वो लड़का ज्योति की बात सुनकर वहाँ से चला गया। चलो अब बहुत हो गया, तुम चाहे जितना रो लो और सर पटक लो, ये शादी तो होकर रहेगी और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो सुनैना, लेकिन बस मानती ही हो। वैसे जितनी जल्दी मान लोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ज्योति ने दुपट्टे से सुनैना का आधा चेहरा ढकते हुए बोला। सुनैना सोफे पर बैठी अपने मोबाइल में किसी का नंबर डायल कर रही थी। ज्योति की नज़र जब उसके फ़ोन पर पड़ी तो उसने देखा कि स्क्रीन पर नैना का नाम फ्लैश हो रहा था। पागल हो गई हो क्या तुम सुनैना? खुद ही मुसीबत मोल लेती हो और इस तरह फेरों से पहले अपनी बहन से बात करके क्या हो जाएगा भला? क्या करना क्या चाहती हो? ज्योति उसके हाथ से उसका मोबाइल फ़ोन छीनते हुए थोड़े गुस्से में बोली, भाभी मेरा फ़ोन वापस करिए। ज्योति की सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सुनैना उससे अपना फ़ोन वापस मांगते हुए एकदम गंभीर लहजे में बोली,
नहीं मिलेगा, चुपचाप नीचे चलो और अगर फ़ोन चाहिए तो बिना कोई ड्रामा करे पूरी शादी करो और फेरों के बाद मैं चुपचाप कायदे से तुम्हारा फ़ोन तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। और अगर ज़्यादा कोई ड्रामा किया तुमने तो ये मैं तुम्हारी माँ को या फिर अपनी सासू माँ यानी कि तुम्हारी प्यारी बुआ जी को दे दूंगी, फिर तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा तुम्हारा मोबाइल।
ज्योति फ़ोन अपने पीछे करते हुए थोड़ा धमकी देने वाले अंदाज में बोली,
क्या मिल क्या रहा है आप लोगों को इस तरह से मुझे तकलीफ और परेशानियां देकर? शादी कर तो रही हूँ मैं आप लोगों के कहने पर, लेकिन फिर भी। सुनैना एकदम मायूसी से वापस सोफे पर बैठती हुई बोली, उसकी आंखों में आंसू फिर से भर आए थे। रोना नहीं और चुपचाप चलो नीचे, बोलते हुए ज्योति ने उसे उठाया और फिर से उसका घूंघट ठीक करके उसे अपने साथ लेकर नीचे हॉल में आ गई। क्रमशः